आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति। मेरे पिछले क्लास में मैंने आपको अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड की पूरी समरी बताई थी, पूरी की पूरी पोयम एक्सप्लेन करी थी, हमने लर्न की थी। तो शुरू करते हैं इसका दूसरा भाग आज। ओके, तो मैं क्विकली समराइज करती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सो इस कविता का केंद्रीय विचार ये है, मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और जरूरतमंदों को हमेशा मदद करनी चाहिए। स्वार्थी के जीवन में संतुष्टि का अभाव होता है, यानी कि वो कभी खुश नहीं रह पाता। तो कविता का सार यानी कि समरी मैं आपको क्विकली रिवाइज कर देती हूँ कि नॉर्थलैंड नाम का एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है जो कि बर्फ से पूरा ढका रहता है, और नॉर्थ पोल के निकट होने के कारण ये जो प्रदेश है वो बहुत ज्यादा ठंड रहता है और सूर्य की रोशनी भी वहां बहुत कम दिख जाती है। सो कवयित्री के अनुसार यहाँ पे जो समय होता है, ऐसे ठंड का जब समय होता है तो वहां की रातें जो है वो लंबी होती है। मतलब ज्यादातर वक्त जो पूरा एरिया है, पूरा इलाका है, वो रात मतलब बहुत ज्यादा डार्क होती है और दिन बहुत कम होता है, यानी कि सूरज की रोशनी वहां पे बहुत कम आती है। लोग पूरी रात सोकर गुजारने से असमर्थ है, लेकिन इस कविता की प्रामाणिकता के संबंध में कवयित्री आश्वस्त नहीं है, यानी कि कवयित्री को यकीन नहीं है कि ये कविता सच में, मतलब ऐसी जो माइथोलॉजी है उसमें जो स्टोरी बताई गई है वो सच में है या नहीं, लेकिन फिर भी वो इस कहानी को सुनाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो एक बार संत पीटर पीटर जो है वो भ्रमण और लोगों को धर्मोपदेश करने में अपने एक दौरे पे होते हैं, मतलब उनके अपने रिलीजन के बारे में लोगों को प्रीच करने में। एक बार क्या होता है बच्चों की उनको भूख लगती है और उन्हें एक बहुत ही पुरानी कुटिया यानी कि बहुत ही पुरानी कॉटेज यानी कि रूम दिखता है उनको, जहाँ पे एक औरत, बूढ़ी औरत वहां पे केक तली है। तो सेंट पीटर जो है वहां पे जाते हैं, संत पीटर उसके पास, और खाने के लिए केक मांगते हैं उस महिला के पास। तो उस बूढ़ी औरत ने सेंट पीटर को एक छोटा केक बनाने का वो प्रयास करती है, पर जब केक तैयार हो जाता है तो वो देखती है कि यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसे तो मुफ्त में नहीं दिया जा सकता। बाद में वो क्या करती है, एक और छोटा केक बनाने का फैसला करती है, और ये कार्य वो तब तक करती है, तब तक चलता रहता है कि सेंट पीटर को तब तक बहुत ज्यादा भूख लगती है। आखिरकार वो क्या करती है कि वेफर की जैसे यानी कि पापड़ के जैसा केक बनाने के लिए सोचती है, और वो केक ऐसा बनाती भी है, लेकिन फिर भी वो देने से वो कतरा रही होती है। तो ये देखकर सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब देने के बजाय वो केक बस अपने पास ही रख के, क्योंकि वो इतनी ज्यादा लालची थी, किसी और को खाना भी नहीं देना चाहती थी। उसके लालच को देख के बच्चों सेंट पीटर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि बूढ़ी औरत वो इतनी ज्यादा स्वार्थी है कि वह मनुष्य के रूप में भी नहीं रह सकती। उन्होंने उस औरत को पक्षी बनने का शाप देते हैं वो, और जंगल में अल्प भोजन की तलाश में जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ देते हैं उसको, यानी कि बहुत ही कम वो उसको श्राप देते कि तुम बहुत ही कम खाने ढूंढने के लिए अपना पूरा जीवन है वो जंगल में व्यतीत करोगी। सेंट पीटर से शापित होने के बाद वो बूढ़ी औरत जो है वो चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाती है और कठफोड़वा में रूपांतरित हो जाती है। कठफोड़वा यानी कौन है, वुड पेकर, जो कि जो हमारा वुड होते हैं, जो लकड़ियां होती हैं उनमें खाना ढूंढने वाला। तो उसका शरीर बहुत ही कोयले जैसा होता है, लेकिन उसका जो सर होता है ना बच्चों, वो ब्राइट रेड कलर के उसमें होता है, और ये सिंबलाइज होता है कि वो जो औरत है वो केक बनाते वक्त उसने रेड कलर की टोपी पहनी होती है, रेड कलर की हैट पहनी होती है। उसके बाद जब भी लोग उसे उस पंछी को जंगल में देखा करते थे और वहां पे वो भोजन अपना भोजन की वो तलाश पंछी करता कर रहा होता था, तो उस वक्त लोग जो है बड़े बुजुर्ग वो अपने साथी लोगों से ये कहा करते थे कि ये देखो वो ये औरत है जिसने बहुत ज्यादा सेल्फिश, मतलब वो थी बहुत ज्यादा स्वार्थी थी, और उसके बदौलत उसको ये वाला शाप मिला है कि वो जो है अपना खाना इसी प्रकार से जंगल में ढूंढती रहे। ओके, तो ये पूरी की पूरी समरी थी बच्चों जो हमने पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, नीचे बहुत ही इजी सवाल दिए गए हुए हैं अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इस पोयम के, तो हम वो सवाल पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं कुछ एडिशनल सवाल भी आपके लिए सॉल्व करूंगी। उसके बाद एज प्रोमिस्ड हम लोग 5 या फिर 10, जैसा हमें टाइम परमिट करता है, उतने हम नए वर्ड सीखेंगे और उन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में प्रयोग करने का भी एक मतलब एक एक्सरसाइज करेंगे हम. ओके तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन पे. विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक नॉर्थलैंड रिफर्स टू, यानी कि हमें ये सवाल किया गया है कि कौन सी कंट्री को रिफर किया गया हुआ है ये नॉर्थलैंड नाम की जगह. तो इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ वेर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम तो नहीं दिया गया है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसी जगह का नाम दिया गया है, यही हम लिखेंगे कि जहाँ पे रातें लंबी हो और दिन छोटे हो, यानी कि यहाँ पे सूरज की किरणें जो है वो बहुत कम पहुंचती हो. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. वॉट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, वॉट वॉज द लेडीज रिएक्शन. तो सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक एंड द लेडी बिहेव मिजरली एंड केप डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक. एट लास्ट शी डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू ईट. यानी कि सवाल हमें ये है बच्चों यहाँ पे कि सेंट पीटर जो है वो ओल्ड लेडी से, बूढ़ी औरत से क्या पूछते हैं और उस औरत का रिएक्शन होता है उस पे. अब है कि सेंट पीटर जो है वो उस औरत से केक मांगते हैं खाने के लिए क्योंकि वो बहुत दिन से भूखे होते हैं, और जो औरत होती है वो बहुत ज्यादा बुरे तरह से उनके साथ बिहेव करती है और वो केक की साइज डिक्रीज करने में लगी रहती है, मतलब केक की साइज कम करने में. ओके आते हैं हमारे अगले सवाल पे. तो सवाल ये है बच्चों, हाउ डिड ही पनिश हर, यहाँ पे ही मतलब कौन है, सेंट पीटर. तो सेंट पीटर उसको कैसे पनिश करते हैं, कैसे उसको सजा देते हैं. तो ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पेकर, यानी कि सेंट पीटर जो है वो उस महिला को श्राप देते हैं और उसको कठफोड़वा में उसको रूपांतरित करते हैं. चौथा सवाल यह है बच्चों, हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड, यानी कि जो वुड पेकर होता है कठफोड़वा उसको अपना खाना किस प्रकार से मिलता है. तो वुड पेकर जो है ही बोर्स द हार्ड एंड ड्राई वुड टू गेट हिज फूड, यानी कि वो अपना जो खाना है वो लकड़ियों में ढूंढता है, अपनी बीक यानी कि अपनी चोच जो है, बीक यानी कि चोच, वो अपनी बीक कंटिन्यूअसली जो है एक वुड में ड्रिल करता है और उसके साथ उसको अपना खाना भी मिल जाता है. तो क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं. डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज, वॉट वुड शी वुड हैव डन. तो यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड हम सीख रहे हैं बच्चों, अनजेनरस. अनजेनरस का मतलब है सेल्फिश. ओके मतलब जो बस अपने बारे में ही सोचता रहता है या फिर अपने ही ख्याली दुनिया में जो इंसान रहता है उसको कहते हैं अनजेनरस. इसको मैं आपको डिफरेंट वर्ड भी इसके लिए दूंगी. एक बहुत ही एक इजी वर्ड है मीन, MEAN. इसका मतलब है जो अपने बारे में सोचता रहता है. सेल्फिश एक दूसरा वर्ड है ना. और इसका ऑपोजिट वर्ड अगर हम देखने जाए तो मतलब है इसका जेनरस, यानी कि बहुत अनजेनरस का ऑपोजिट है जेनरस. और जेनरस का मतलब क्या है, जो इंसान अपने बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हमेशा दूसरों के लिए हेल्पफुल रहता है वो. ओके तो सवाल यह है बच्चों कि क्या वो बूढ़ी औरत इतनी ही अनजेनरस रहती अगर उनको ये पता होता कि सेंट पीटर कौन है, और अगर उनको सच में पता होता कि सेंट पीटर कौन है तो वो क्या करती, ये सवाल है. तो इसका जवाब है नो, शी वुड नॉट हैव डन दिस. ऑन द कॉन्ट्ररी शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक टू मेक हिम हैप्पी विद द ग्रीड टू गेट हैंडसम रिटर्न. यानी कि क्या है मतलब कि अगर उस औरत को सच में पता होता कि सेंट पीटर तो वो क्या करती, वो उनको और ज्यादा बड़ा वाला केक दे देती. क्यों दे देती वो बड़ा वाला केक, बस यही सोच के कि उन सेंट पीटर से उनको कुछ फायदा मिलेगा, यानी कि हैंडसम रिटर्न, यानी कि कुछ उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें. इसी सोच से वो सेंट पीटर को बहुत बड़ा वाला केक देती, इसमें भी उनका उस औरत का स्वार्थ होता. आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स पे. इज दिस अ ट्रू स्टोरी, विच पार्ट ऑफ द पोयम डू यू फील इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यानी कि सवाल हमें ये पूछता है कि क्या आपको ये सच में स्टोरी रखती है और कौन सा वाला हिस्सा जो है पोयम में वो आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है. तो इसका जो जवाब है वो हमारी पोएट जो है उन्होंने खुद दिया है कि नो इट इज एन इमेजिनरी स्टोरी एंड इट इज अ लेजेंड, यानी कि वो बहुत पुरानी पोयम है. और थर्ड स्टेंजा ये पोयम का जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें लगता है जानने के लिए. ओके मतलब पूरी की पूरी पोयम का जो क्रक्स है वो जानने में थर्ड स्टैंडा से शुरुआत होती है. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे. व्हाट इज अ लेजेंड एंड व्हाई इज दिस पोयम कॉल्ड अ लेजेंड, यानी कि पोयम को लेजेंड क्यों कहा गया हुआ है. तो इसका जवाब है अ लेजेंड, और लेजेंड का मतलब भी पूछा गया है बच्चों हमें. बेसिकली लेजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स, यानी कि लेजेंड का मतलब है कि पुरानी हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज आप इसको कह सकते हैं, उनकी और उनके होने के बाद में जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में. एंड द टाइटल ऑफ द पोयम टेल्स अस दैट इट्स अ लेजेंड, यानी कि टाइटल ही पोयम का जो है, नाम ही पोयम का, तो उसी से हमें पता चलता है कि ये जो पोयम है वो लेजेंड है. और पोएट हिमसेल्फ सेज दैट आई डोंट बिलीव दैट इट इज ट्रू, यानी कि पोएट जो है वो खुद कहती है कि मैं यकीन नहीं करती कि ये पोयम सच में सही है, मतलब सच में ऐसी चीजें हुई हैं या फिर नहीं. क्योंकि हम अगर बच्चों साइंटिफिक अप्रोच अगर हम देख के अगर सोचे ना इस बारे में, तो हमें ये पता चल जाता है यहाँ पे कि ऐसा सच में हो सकता है क्या, अगर हम इस बारे में विचार करें कि सच में कोई ऐसी महिला शाप के कारण चिमनी के तरफ जाती है और चिमनी से फिर उड़ जाती है एक पंछी बनकर. तो अगर हम अपनी रैशनल माइंड यानी कि अपना दिमाग लगाकर अगर हम सोचें तो ऐसी बातें सच में पॉसिबल नहीं है. बस ऐसी बातें यहाँ पे इसलिए बताई गई हुई हैं, ये प्रॉपरली मोरल वैल्यूज इसलिए दी गई हुई हैं ताकि हम समझ सके कि सेल्फिशनेस रखना या फिर सेल्फिश होना कितना कितनी बड़ी हमारी भूल है और ये कितना बड़ा पाप है. हमने ऐसे बस खुदगर्ज होके बस खुद के बारे में सोच के अपना लाइफ नहीं कंटिन्यू कर लेना चाहिए, बल्कि हमने ये करना है कि जो भी हमारे आसपास में लोग हैं, जो भी हमारे दरवाजे पे आते हैं, किसी किसी मतलब जो जेन्युइन लोग होते हैं उनकी हम मदद करें, मतलब जो भी हेल्प मांगते हैं उनकी हमने मदद करने में हमारे हमारी क्षमता होनी चाहिए. यही पोयम का बच्चों इस क्रक्स है. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अनकाइंड हो जाए. यहाँ पे पोएट एक और क्रक्स मैं आपको बताती हूँ. एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आप काइंडनेस शो करो, मतलब कि आप अच्छा लोगों के साथ बर्ताव करो, इसलिए नहीं कि वो लोग अच्छे हैं बट इसलिए क्योंकि आप अच्छे हो. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से लगती है आप सब बच्चों ने समझ जानी चाहिए इस लाइन को, क्योंकि ये प्रॉपर मोरल एजुकेशन है जो आपने अपने दिमाग में फिट रखना है ताकि एक अच्छे सोसाइटी की डेवलपमेंट हो. मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आपको अच्छे तरह से सब लोगों के साथ अच्छे प्रकार अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, अच्छे सलीके से. क्यों? ये इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग अच्छे हैं बट इसलिए कि आप अच्छे हो, है ना. तो आते हैं हमारे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस. ओके, तो इसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मतलब आप अपने तरीके से फ्रेम करिएगा. सो द पोयम इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन. शी इज आस्क्ड बाय सेंट पीटर फॉर आल्म्स हु हैज बिकम वीक बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रेवलिंग. सो हर ग्रीड फोर्सेस हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग. ही बिकम्स एंग्री एंड मेक्स हर अ वुड पेकर हु बोर्स हार्ड ड्राई वुड टू गेट फूड. हर क्लोथ्स आर बर्न टू एशेस एंड शी इज लेफ्ट विद अ कैप ऑन हर हेड. शी कंटिन्यूज बोरिंग इन टू हार्ड वुड फॉर द लिटिल फूड. यानी कि पूरी की पूरी पोयम की समरी जो है वो बस 10 सेंटेंस में आपको बतानी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई है इंग्लिश में. आप लोग क्या करेंगे, आप इसको समझेंगे और अपने शब्दों में अपने किताबों में लिखेंगे. ओके, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं. क्वेश्चन है, लेट्स लुक एट द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स विच सेज स्नो एंड क्लोथ्स ट्रू एंड यू बिलो एंड नो. वी फाइंड दैट स्नो राइम्स विथ क्लोथ्स एंड ट्रू राइम्स विथ यू एंड बिलो राइम्स विथ नो. फाइंड मोर सच राइमिंग वर्ड्स. यानी कि हमें ये बताया गया हुआ है कि जैसे स्नो राइम करता है क्लोथ से, ट्रू राइम करता है यू से, बिलो राइम करता है नो से, ऐसे ही हमने जो है वो राइमिंग वर्ड्स इस पोएम में ढूंढने हैं. ओके, तो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे अर्थ और हर्थ ये दो राइमिंग वर्ड्स है, ई ए आर टी एच और एच ई ए आर टी एच. ओके, और राइमिंग वर्ड है डन और वन, डी ओ एन ई और ओ एन ई. तीसरा राइमिंग वर्ड है बच्चों ले और अवे, एल ए वाई ले और ए डब्ल्यू ए वाई अवे. ओके, एक और राइमिंग वर्ड है अनदर और ओवर, ए एन ओ टी एच ई आर अनदर और ओ वी ई आर ओवर. ओके, तो इतने सारे राइमिंग वर्ड्स है. और एक लास्ट राइमिंग वर्ड है सेम और फ्लेम, एस ए एम ई सेम और एफ एल ए एम ई फ्लेम. ओके, ये बस इनका मतलब बच्चों सेम नहीं है, बस आपको ये जानना है यहाँ पे कि वो एक दूसरे से राइम करते हैं, यानी कि वो वर्ड सुनने में बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं। ओके दैट्स इट। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। आपको करना है, क्वेश्चन है, गो टू द लोकल लाइब्रेरी और टॉक टू द ओल्डर पर्सन इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड लेजेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज, टेल द क्लास दिस लेजेंड्स। ये बस आपको करनी है, इसमें मैं आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकती हूँ। आपको क्या करना है, आपके लोकल लाइब्रेरी में जाना है, यानी कि लोकल वाचनालय है वहां पे जाना है, और आपको फाइंड आउट करना है, या फिर किसी ओल्ड इंसान से आपसे मिलना है, और उनको ऐसे ही आपके यहाँ पे कोई ऐसी स्टोरी है क्या पुरानी वुरानी, तो उस बारे में आपको बताना है। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ बच्चों, एक ऐसी लेजेंड एज सच नहीं है, बट एक पंछी हमारे यहाँ पे उड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब वो पंछी जो है वो, उसका नाम किसी को नहीं पता यहाँ पे, किसी भी लोगों को, बस जब वो आता है ना पंछी, तो ऐसा उसका साउंड होता है कि ऐसा लगता है कि वो हमें, हम इंसानों को कह रहा है कि पेरतेवा पेरतेवा। मतलब हमारे लैंग्वेज में, कोंकणी में, इसका मतलब है कि आप लोग जो है खेतों में जाइए और खेतों में आप लोग काम अपना करना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस लोग मानते हैं यहाँ पे कि जब वो पंछी जब ऐसे आता है समर के बाद, और जब ऐसे चीखने, मतलब उसकी जब ऐसी आवाज आती है, तब हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि बारिश आने वाली है। ओके, मतलब कुछ ही अभी एक दो हफ्तों में बारिश आएगी। तो ऐसा ही होता है, जब भी वो पंछी ऐसे आके जब चीखता है, तो उसके कुछ दिन बाद ही, मतलब कुछ दिन नहीं, बस 4-5 दिन बाद बारिश आनी शुरू होती है। तो ये है लेजेंड हमारे यहाँ का। आपके यहाँ भी ऐसे कोई लेजेंड, ऐसी कोई कहानियां होंगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया है, क्योंकि ये पोयम थोड़ी सी डिफिकल्ट थी समझने में, इसका क्रक्स जानने में, और मुझे ये पोयम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसे सवाल मतलब निकाले हैं स्पेशली अपनी ओर से, कि आपको आप कह सकते हैं मोरल एजुकेशन में भी आपकी मदद करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। व्हाट मोरल लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोयम, मतलब आपको अच्छी तरह से कौन सी सीख इस पोयम से मिल जाती है, ये आपको पहले सोचना है। ओके, तो मैं आपका इसका जवाब मैं आपको आसान भाषा में दे देती हूँ, इंग्लिश में ही दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर लूंगी। ओके, सो द पोयम टीचेस अस दैट ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन शेयरिंग थिंग्स विद पर्सन हु आर इन नीड। मतलब कि ये है कि हमारा सच में जो खुशी है हमारी, वो इन चीजों में है कि हम लोग किस तरह से अपना हैप्पीनेस जो है वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यानी कि उस, अब आप इस पोयम का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमें ये समझ में आता है बच्चों कि जो औरत थी, जो महिला थी, उसके पास में केक्स थे, है ना, और वो खा पी के ऐसे मस्त थी, उसका कोई ऐसे भूख वगैरह उसको नहीं थी। अगर वो अपना जो केक है, अपने हिस्से का कुछ जो खाना है, वो अगर सेंट पीटर के साथ शेयर कर लेती, उनसे अगर दे देती, उनसे एक हाथ केक का टुकड़ा भी अगर वो उन्हें अच्छी तरह से स्माइल करके दे देती हंस हंस के, तो सेंट पीटर तब बहुत ज्यादा खुश हो जाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत भूखे थे तब, जब उसके उस महिला के घर वो जब आए थे तब। ओके, सो इफ वी आर ग्रीडी बेसिकली, मतलब कि अगर हम सेल्फिश हैं, तो वी वी कैन नॉट हैव दैट हैप्पीनेस इन आर लाइफ। मतलब हम सेल्फिश होके हम क्या करते हैं, बस अपने बारे में ही हम सोचते रहते हैं। और अगर हम सेल्फिश ना हो, अगर हम जैसे कि मैंने आपको पीछे वर्ड कहा था जेनरस, अगर हम जेनरस हो, तो हम क्या, हमें क्या अनुभव करने को मिलेगा बच्चों, हम जब अपनी कोई भी चीज अगर जब लोगों के साथ शेयर करेंगे, तब हमें उनके चेहरे की जो खुशी है वो हमें देखने देखने को मिलेगी। और उससे क्या होगा, जब हम दूसरे की जब खुशी हम देखेंगे, तब हम भी उसी तरह से खुश हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे जिंदगी में भी खुशियां आ सकती है। ओके, सो ऑन द अदर हैंड, आवर चैरिटेबल नेचर मेक्स अस थिंक अबाउट पेन्स एंड सोरो सफर्ड बाय द अदर पीपल। यानी कि क्या है, हमारा चैरिटेबल नेचर जो है, मतलब दान भावना जिसको हम कहते हैं, वो जब हमारे अंदर आ जाता है, तब हम ये महसूस करते हैं बच्चों कि हमारे आस पड़ोस में कितने ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, या फिर लोग कितने ज्यादा दुखी हैं, है ना। मन में जो दया भाव होता है, यानी कि किसी भी चीज को लेके उसके लिए आपके मन में एक अच्छी फीलिंग, यानी कि उस, अगर उस इंसान के साथ, या फिर उस सिचुएशन अगर बुरा हो, तो वो देख के जब आपके मन में सच में आपको भी बुरा फील हो जाता है, तब आपका मन भी उतना ही सेंसिटिव हो जाता है ना। और हम क्या करते हैं, ऐसी फीलिंग आने के बाद जब हम वो सुधारने का जब प्रयास करते हैं अपनी ओर से, मतलब छोटा ही क्यों ना हो, पर हम जब सामने से जाके किसी भी इंसान को जब हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है बच्चों, एक अच्छे सोसाइटी की स्थापना होती है। यानी कि आप जब बिलीव करते हैं कि मैं खुश तब तक नहीं रह पाऊंगी या फिर नहीं रह पाऊंगा जब तक मैं अपने आस पड़ोस में जो लोग हैं उनकी खुशी नहीं देखता हूँ या फिर नहीं देखती हूँ, तब उस सब में क्या होता है कि हम लोग एक अच्छे सोसाइटी का, अच्छे परिवार का भी निर्माण करने में हम उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो बच्चे हैं जी, हम क्या करेंगे, बट ऐसा बच्चों नहीं होता। आप अगर सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अगर आपके आस पड़ोस में जो सफाई कामगार होते हैं या फिर टेक फॉर एग्जाम्पल जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं या फिर कुत्ते होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स, अगर आप उनको खाना अपनी ओर से, मतलब थोड़ा सा क्यों ना हो वो, बट अगर आप वो देने की कोशिश जब आप करते हैं या फिर किसी भी, जब हम देखते हैं लोग भीख मांगते हैं जो बेगर्स होते हैं उनकी अगर आप सहायता करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको उन्हें जाके पैसे देने हैं। ओके, हमें पैसे नहीं देने, हमें क्या करना है, अगर हम उनको खाना भी अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर अपने पुराने कपड़े भी अगर हम उन लोगों की तरफ पहुंचा सकते हैं, तो ये एक प्रकार की चैरिटी ही होती है। इस प्रकार से जब हम उनको अगर ऐसे हेल्प करते हैं या फिर हम ऐसे अगर चीजें करते हैं, तब उनके चेहरे की खुशी या फिर उनके जिंदगी में जो खुशी आती है ना बच्चों, वो हमारे जिंदगी में भी उतनी ही खुशी लाती है। ओके, तो होता, मैं आपको आगे बताऊंगी इसका जवाब। सो द चैरिटेबल पीपल हैव मेनी फ्रेंड्स एंड दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद वन अनदर विद अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ सेंटिमेंट्स, बट द ग्रीडी पीपल हैव हार्डली एनी फ्रेंड्स एंड दे ऑफन लिव अलोन इन द वर्ल्ड। यानी कि जो खुदगर्ज लोग होते हैं वो बस अपने बारे में ही सोचते हैं, और इस वजह से क्या होता है बच्चों कि उनको बहुत ज्यादा दोस्त या फिर ऐसे कोई उनको नहीं होता जिनके साथ वो अपनी खुशियां या फिर दुख अपना बांट सके। इससे क्या होता है कि वो अपनी जिंदगी बस अकेले रहने, अकेले गुजारने में वो प्रवृत्त हो जाते हैं या फिर उन फोर्सफुली वो लोग अकेले ही रह जाते हैं इस वर्ल्ड में। ओके, इस दुनिया में। सो व्हाट क्वालिटी डू यू फाइंड इन सेंट्स, यानी कि यहाँ पे दूसरा सवाल मैंने आपके लिए ये निकाला है कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको, जो संत लोग हैं उनमें दिख जाती हैं। ओके, तो संत लोग जो होते हैं, यानी कि संत यानी कि सेंट्स, वो बहुत ज्यादा वाइज होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। दे हैव गेन हेवनली पावर, यानी कि वो स्वर्ग, भगवान ने जो सिखाया गया होता है उनको, वो वाली पावर उनमें आती है। मतलब वो सोच अच्छा तरह, अच्छे तरह से काइंडनेस उनके अंदर आ जाता है। एंड उनको बच्चों ना ऐसे बहुत ज्यादा गरीबी या फिर बहुत ज्यादा रिच होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भले उनको कितने ही पैसे दो या फिर उनके उनके पास जो वेल्थ है वो भी अगर आप मतलब आप जबरदस्ती ले लो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली वो लोग ऐसे होते हैं कि उनको ज्यादा मतलब ज्यादा खुशी भी नहीं होती, उनको ज्यादा मतलब दुख भी नहीं होता किसी चीज का। वो तो बस क्या करते हैं, भगवान ने उनको जो जो प्रीचिंग सिखाई सिखाई गई है, जो जो रिलीजियस बातें उनको पता है, वो क्या करते हैं पूरे दुनिया में वो बांटने की बस वो कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि दुनिया जो है वो एक प्रकार की जो अनसिविलाइज, यानी कि बहुत ही गंदी जो लाइफस्टाइल लोग जी रहे होते हैं, वो उनको अच्छी तरह से एक प्रॉपर वे में वो लोग चैनलाइज करते हैं। ओके, सो बेसिकली द रिच मेक्स नो सेंस फॉर देम टू विच, वो मतलब उनको रिच भी हो आप गरीब भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दे नीड ओनली फूड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, मतलब उनको बस खाना, उनको जरूरत के हिसाब से ही उनको खाने की उनकी इच्छा होती है, बस जिंदा रहने के लिए जितना खाना चाहिए होता है उसी की बस उनको चाह होती है। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हाउ इज ट्रू सेटिस्फेक्शन स्पॉइल्ड बाय ग्रीड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, मतलब मोरालिटी के हिसाब से कि हाउ ट्रू सेटिस्फेक्शन इज स्पॉइल्ड बाय द ग्रीड। यानी कि जो अच्छा हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है वो सेल्फिश सेल्फिश होने की वजह से किस तरह से स्पॉइल हो जाता है ना। तो इसका जवाब मैं आपसे बताऊंगी ये कि ट्रू सेटिस्फेक्शन लाइज इन शेयरिंग ऑफ द थिंग्स विथ अदर्स। यानी कि हमारा सच्चा जो हमारे मन की शांतता है, हमारी शांति है, पीस है जो हमारे मन में, वो तब भी आता है जब हम अच्छी चीजें किसी इंसान के साथ, किसी मतलब किसी भी इंसान को या फिर किसी भी लिविंग क्रीचर के साथ जब हम शेयर करते हैं तब। ओके, सो पीस एंड सेटिस्फेक्शन आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। यानी कि आप अगर कॉइन को देखें तो उसकी दो साइड्स होती है ना। तो पीस एक साइड हो, मतलब अगर हम पीस एंड सेटिस्फेक्शन अगर देखें, मतलब शांति और समाधान, ये दोनों ही एक ही मतलब एक ही साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पीस आपके साथ आए तो सेटिस्फेक्शन ना हो, या फिर सेटिस्फेक्शन हो तो पीस ना हो, ऐसी बातें नहीं होती। जब आप खुश रहते हो तब आप सुखी रहते हो, मतलब जब आप पीसफुल रहते हो, आपको जब शांति होती है आपके मन में तब आप खुश रहते हो, और आप खुश तब रहते हो जब आपके मन में शांति होती है ना। तो इफ देयर इज अ सेटिस्फेक्शन इन आर लाइफ, पीस इज बाउंड टू कम इन आर लाइफ। यानी कि अगर हमारे मन में शांति है हमारी जिंदगी में, तो हम खुशी भी उसी तरह से, उसी के साथ, शांति के साथ ही खुशी आती है ना। हावेवर ग्रीड स्पॉइल्स द बोथ। अगर हम सेल्फिश होते हैं जब बच्चों, तब हमारे लाइफ की जो पीस और सेटिस्फेक्शन है, दोनों की दोनों चीजें हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। एंड इफ वी आर ग्रीडी वी कैन नॉट गेट सेटिस्फेक्शन एज वेल एज पीस इन आर लाइफ। यानी कि अब अगर पोएम से अगर हम इस रिलेट करें, तो जब हम सेल्फिश होते हैं, जब हम खुदगर्ज होते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं, तब हमारे जिंदगी में सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी नहीं आता। जिस जिस तरह से जो महिला थी हमारे पोएम में, जैसे कि वो वुड पेकर बन गई, बस थोड़े से खाने के लिए उसको इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसी वजह से जब हम ग्रीडी हो जाते हैं, जब हम सेल्फिश हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे में अच्छा भला सोचने की, अच्छा या फिर बुरा सोचने की हमारे में ताकत नहीं रहती है ना। तो इन द पोयम द ओल्ड लेडी वॉज ग्रीडी एंड शी फेल टू गिव केक टू सेंट। यानी कि जो महिला है वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ग्रीडी होती है, और वो हमारे जो सेंट पीटर होते हैं उनको केक देने में वो असफल रहती है। इफ शी हैड सेटिस्फेक्शन शी वुड हैव सर्टनली हैव शोन ऑनर एंड रिगार्ड टू द सेंट। अगर उनके मन में बच्चों शांति रहती, मतलब अगर वो इतनी ज्यादा ग्रीडी ना होती, तो वो सहजता से अपने जो अपने दुकान में जो अपने केक बने होते हैं उसके घर में, वो सेंट पीटर को दे देती। और इससे उनका श्राप भी था, जो कर्स उनको सेंट पीटर दे देते हैं वो भी टल जाता है ना। सो इन दिस केस ऑफ दिस लिटिल लेडी इट कैन बी सेड दैट हर ग्रीड हैज स्पॉइल्ड हर पीस एंड सेटिस्फेक्शन। ओके, यानी कि मतलब उसके खुदगर्ज जो उसका स्वभाव है उस महिला का, वो ही जिम्मेदार होता है उसके लाइफ का जो पीस एंड सेटिस्फेक्शन है वो स्पॉइल करने में। ओके, सो एक्चुअली द सेंट्स ट्राई टू क्रिएट सच सोसाइटीज इन विच पीपल शैल बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी एंड ग्रीड विल हैव नो रूम इन देम विद द हेल्प ऑफ द टीचिंग्स दे डिजायर टू ब्रिंग डाउन हेवन ऑन द अर्थ। यानी कि जो सेंट्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं बच्चों, ऐसी ऐसी सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने में बिलीव करते हैं जहाँ पे पीस और इक्वालिटी हो, यानी कि सब लोग एक तरह से हो, एक एक ही मतलब एक ही तरह से लोग रह रहे हो, ऐसी सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना सेंट्स जो है वो बिलीव करते हैं। अब एज प्रॉमिस मैं आपको कुछ यहाँ पे वर्ड्स बताऊंगी, उनका मतलब भी समझाऊंगी आपको, और इससे आपकी वोकैबलरी में आपकी मतलब सुधार हो जाएगी। ओके, तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं आपको वर्ड बताऊंगी, वर्ड है एपिफेनी। इसका मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगी, EPIPHANY, एपिफेनी। इसका मतलब है सडनली आपको कुछ रियलाइज हो जाना। ओके, जैसे कि आप अगर आप घर जाते हो, तब आपको ऑल ऑफ अ सडन आपको रिमेम्बर आपको याद आता है कि अरे कल तो मेरी एग्जाम है तो आज मुझे पढ़ना है। तो ये दिस इज द मोमेंट फॉर एपिफेनी। ओके, दिस वॉज द मोमेंट ऑफ एपिफेनी व्हेन आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू स्टडी फॉर माई टेस्ट, है ना। तो वर्ड है एपिफेनी, इसका मतलब है द मोमेंट ऑफ सडन ग्रेट रियलाइजेशन। ओके, दूसरा वर्ड मैं आपको बताऊंगी बच्चों, वर्ड है ओमनिसेंट, OMNISCIENT, ओमनिसेंट। इसका मतलब है ऐसा इंसान जिसको सब पता है, या फिर वाइज जिसको हम कहते हैं ना, ऐसा इंसान जिसको सबके बारे में सब कुछ पता है, ओमनिसेंट। ओके, OMNISCIENT, ओमनिसेंट। अगला वर्ड बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, एसर्शन, ASSERTION, एसर्शन। इसका मतलब है अ डिक्लेरेशन दैट इज मेड एम्पिफेटिकली, अ डिक्लेरेशन दैट इज मेड एम्पिफेटिकली। अब आप ये सोचोगे कि एम्पिफेटिकली का मतलब क्या है, एम्पिफेटिकली का मतलब है विदाउट क्वेश्चन एंड बियॉन्ड डाउट, मतलब कोई भी सवाल ना पूछे बगैर। और इसका स्पेलिंग क्या है, EMPHATICALLY, मतलब एम्पिफेटिकली का मतलब है कोई भी सवाल पूछे बगैर, है ना। और असर्शन का मतलब है अ डिक्लेरेशन दैट इज मेड विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। तो हमने बच्चों आज कौन कौन से वर्ड्स पढ़े, हमने पढ़ा ओमनिसेंट, इसका मतलब है ऐसा इंसान जिसको सब पता है, assertion, जिसका मतलब है ऐसा डिक्लेरेशन करना कोई भी सवाल पूछे बगैर। एम्पिफेटिकली का मतलब है कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल पूछे बगैर, है ना। एपिफेनी का मतलब है अ मोमेंट ऑफ सडन ग्रेट रियलाइजेशन। तो ये बच्चों आपको जो वर्ड्स है वो आपको भविष्य में आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब नॉर्मल भाषा में हम बात करते हैं तब भी अगर हम ये वर्ड्स यूज करें तो अपनी वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।